रात के 12 बज रहे थे। मिस्टर रायचंद मुंबई के सबसे बड़े क्लब में बार काउंटर के पास बैठे ड्रिंक कर रहे थे। उनकी लाल आंखें गुस्से और नफरत से भरी थीं। उन्होंने एक और पैग लगाया और सुबह हुई मिस्टर मल्होत्रा से मीटिंग के बारे में सोचने लगे। फ्लैशबैक। जब मिस्टर रायचंद ने मिसेस रायचंद से बात की, उस टाइम मिस्टर मल्होत्रा उनके सामने बैठे थे। क्या कहा भाभी ने, वो लड़की कायरव को छोड़कर जाने के लिए मान गई? सवाल सुनकर मिस्टर रायचंद के माथे पर कुछ सिलवटें उभरी। अभी तो नहीं मानी, हमने उसे बहुत अच्छी डील ऑफर की, पर वो लड़की जितनी शरीफ दिखती है उतनी है नहीं। कायरव को उसने अपने कंट्रोल में किया हुआ है, इतनी आसानी से उसे छोड़कर नहीं जाएगी। कायरव ने भी बहुत सोच समझकर ये चाल चली है। पूरी मीडिया के सामने उसने कह दिया कि पहले हम उस लड़की के गरीब परिवार से होने की वजह से रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन अब हमने उसे अपना लिया है। पूरे एशिया में कायरव रायचंद की शादी की खबर फैल गई है। इतने अमीर खानदान ने एक मिडिल क्लास लड़की को अपनी बहू बनाया, ये खबर ट्रेंडिंग में है। अब जो हालात बने हैं उसमें हम खुलकर इस रिश्ते का विरोध नहीं कर सकते। इस वक्त कायरव जिद पर अड़ा है और उस लड़की को छोड़ने को तैयार नहीं है। हम उसके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते, वरना वो घर छोड़कर चला जाएगा और पूरी बाजी हमारे हाथ से निकल जाएगी। हमें जो करना होगा बहुत सोच समझ कर करना होगा। इस लड़की को कायरव की ज़िंदगी से ऐसे बाहर निकालना होगा कि वो लड़की कायरव की ज़िंदगी और हमारे घर से बाहर भी हो जाए, कायरव कुछ कर भी ना सके और मीडिया की सिंपथी भी हमें मिले। इससे हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। काम थोड़ा मुश्किल है, पर तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूँगा। बहुत जल्द मैं उस लड़की को धक्के मारकर अपने घर और अपने बेटे की ज़िंदगी से बाहर निकालूंगी और उसके बाद तुम्हारी बेटी बहू बनकर मेरे घर आएगी। अब तक मिस्टर मल्होत्रा शांत बैठे थे, वो एकदम गुस्से से भड़क उठे। मैं यहाँ ये सब सुनने नहीं आया हूँ यश, तूने वादा किया था कि तेरे बेटे की शादी मेरी बेटी से होगी, तभी मैंने इस पार्टनरशिप के लिए हाँ कहा था। अब तू अपनी बात से पीछे हट रहा है। वहाँ तेरे बेटे ने एक सड़क छाप लड़की से शादी कर ली, सारी दुनिया के सामने उसे रायचंद खानदान की बहू का दर्जा दे दिया, भरी महफिल में मेरी बेटी का दिल टूटा। वो लड़की अभी भी तेरे घर में है, तेरा बेटा उसे छोड़ने को तैयार नहीं और यहाँ तू मुझे ये कहानियाँ सुना रहा है। देख बलराज, कायरव ने मुझे भी धोखे में रखा था। मुझे भी कल पार्टी में ही पता चला कि उसने ऐसा कुछ किया है। अगर मुझे पहले इन सब के बारे में पता होता तो मैं उसे कभी ऐसा नहीं करने देता। लेकिन तू चिंता मत कर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी मामला गर्म है। इस वक्त कुछ भी करना सही नहीं होगा। तू थोड़ा टाइम दे मुझे, मैं उस लड़की को कायरव की ज़िंदगी से बाहर निकाल दूंगा और जैसा कि मैंने तुझसे वादा किया था, उसके बाद सिया की कायरव से शादी करवा देंगे। मिस्टर मल्होत्रा कुछ देर गुस्से से उन्हें घूरते हुए फिर कठोर स्वर में बोले, तेरा बेटा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। वो मेरी बेटी से शादी नहीं करना चाहता, उसकी ज़िंदगी में दूसरी लड़की थी और तूने ये सब बातें मुझसे छुपाई। मुझसे वादा किया कि कायरव की शादी सिया से ही होगी, लेकिन तू अपना ये वादा नहीं निभा सका। अपनी बेटी की खुशी के लिए मैंने तेरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने का फैसला किया था। मेरी वो ज़मीन जिसकी कीमत आज करोड़ों में है और उसे खरीदने वाले एक से बढ़कर एक कीमत देने को तैयार हैं, मार्केट से कम प्राइस में तुझे बेचने को तैयार हो गया। लेकिन आज तेरे वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू हैं, इसलिए अब मल्होत्रा एंटरप्राइजेस की रायचंद एम्पायर के साथ तब तक कोई पार्टनरशिप नहीं होगी जब तक तू अपना किया वादा पूरा नहीं कर लेता। अब इस ज़मीन की डील भी तभी होगी जब तुम उस लड़की को अपने घर से बाहर निकालोगे और मेरी बेटी की शादी अपने बेटे से करवाओगे। मिस्टर मल्होत्रा ने सामने रखे पेपर्स उठाकर टुकड़े टुकड़े करके वहां बिखेर दिए और गुस्से में वहां से चले गए। मिस्टर रायचंद ने फ्लोर पर बिखरे पेपर्स को देखा और गुस्से से उनका खून खौल उठा। इस ज़मीन पर उनकी नज़र कितने टाइम से थी और वो उसे लेने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन मिस्टर मल्होत्रा अपनी उस पुश्तैनी ज़मीन को बेचना नहीं चाहते थे। मार्केट एरिया में मौजूद उस ज़मीन की कीमत करोड़ों की थी और हर पल उसकी कीमत बढ़ती ही जा रही थी। सिया को कायरव पसंद आया तब उसकी खुशी के लिए मिस्टर मल्होत्रा ने मिस्टर रायचंद के सामने एक डील रखी। वो उनकी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते, वो ज़मीन मार्केट से कम प्राइस पर उन्हें देते और बदले में वो सिया के लिए कायरव को चाहते थे। उन्होंने भी अपना शातिर दिमाग लगाकर ऐसी डील दी कि मिस्टर रायचंद मना नहीं कर सके और उन्होंने तुरंत उनकी बात मान ली। फाइनली अब वो ज़मीन उनकी होने वाली थी जिस पर वो मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते थे। करोड़ों का प्रॉफिट होता उससे उन्हें, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो गया था जिसका जिम्मेदार उन्होंने इनाया को ठहराया। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा था, अगर तू बीच में नहीं आई होती तो कल हम कायरव से सिया की सगाई करवा देते और आज ये ज़मीन हमारे नाम हो जाती, लेकिन तेरे वजह से हमारा बना बनाया प्लान खराब हो गया, हमें हमारे ही घर से निकलवा दिया। इसका अंजाम भुगतना होगा तुझे, तुमने यशवर्धन रायचंद से दुश्मनी मोल लेकर अच्छा नहीं किया। मिस्टर रायचंद की आंखें खूनी रंग में रंगी थीं, उनके खतरनाक इरादों से इनाया और कायरव दोनों ही अनजान थे। अगले दिन कायरव जिम से लौटा और जैसे ही रूम में एंटर किया, इनाया एकदम से उसके सामने आ गई। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं कब से कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आज क्या पहनूं,
अब तुम ही बताओ तुम्हारी दादी को क्या अच्छा लगेगा, ये सूट पहन लूं या ये वाली साड़ी। अंदर और भी ऑप्शन है, तुम चलकर देख लो और फटाफट मुझे आज के लिए कपड़े सिलेक्ट करके दे दो। उसके बाद मुझे नहाना भी है, मुझे पहले ही बहुत लेट हो गया है। कायरव चौंका, हाथ सीधे सीने पर गया। अगले ही पल वो इनाया पर भड़क उठा। क्या करती हो तुम, ऐसे अचानक सामने कौन आता है? मैंने क्या किया है? इनाया आंखें बड़ी बड़ी करके असमंजस भरी नजरों से उसे देखने लगी। मुझे पूरी तरह से अंदर आ जाने देती, उसके बाद आराम से भी तो तुम मुझसे ये बोल सकती थी। मैंने तो आराम से ही बोला है, लेट हो रहा है मुझे, वेट करने में और टाइम नहीं वेस्ट कर सकती थी। इतनी देर से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। एक तो तुम खुद देर से आए, मेरी प्यारी सी शक्ल देखकर डर गए और अब ब्लेम भी मुझ पर ही डाल रहे हो। इनाया उल्टा उसी पर चढ़ गई। कायरव ने बेबसी से सर हिलाया और उसकी साइड से निकलकर जाने लगी। इनाया की आंखें फैल गईं। अरे तुम कहाँ भागे जा रहे हो, मैं इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मुझे लेट हो रहा है, अभी शावर भी लेना है और रेडी भी होना है। तुम जहाँ भी जा रहे हो पहले मुझे बताकर जाओ कि क्या पहनूं। इनाया हड़बड़ाते हुए उसके पीछे भागी। कायरव उसकी बात सुनकर रुक गया। उसके पीछे आती इनाया उसकी पीठ से अटक रही। हड़बड़ी में पीछे हटने लगी कि कारपेट में उसका पैर उल्टा और वो गला फाड़कर चीखी। ये सब इतने अचानक हुआ कि कायरव कुछ समझ ही नहीं पाया। इनाया की चीख सुनकर वो झटके से पलटा। इनाया ने गिरने से बचने के लिए हाथ बढ़ाया। कायरव को पकड़ने वाली थी वो, लेकिन कायरव के पलटने की वजह से पकड़ नहीं सकी। अगले ही पल कायरव ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। इनाया उसके सीने से आ लगी और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। कायरव ने अपनी आंखों को बंद करके हुए गहरी सांस छोड़ी। इनाया से ज्यादा तो वो घबरा गया था। अपने बेचैन दिल को शांत करवाने के बाद कायरव ने आंखें खोली और चिंता भरी नजरें इनाया पर जा टिकी। तुम ठीक हो? इनाया अब तक संभल चुकी थी। उसने उसके सीने से सर बाहर निकालकर उसे देखा और मीठी सी मुस्कान होठों पर बिखेरते हुए बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुमने टाइम पर मुझे पकड़कर गिरने से बचा लिया, वरना आज तो मेरा सर फूट जाता।
कायरव की आंखें खतरनाक अंदाज में से कुड़ गईं, चेहरे पर नाराजगी झलकने लगी। अगले ही पल वो गुस्से से भड़क उठा। टू बी कंटिन्यूड।